क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है।
कहती है अनहोनी हर आग दुनिया, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग तारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा।
जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा,
जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा।
जो बेटी है राजकुमारी उसका विवाह उस युवक से होगा जो एक राज्य महल में दिव्य कवच है उसको धारण करेगा और 500 सीढ़ियां चढ़ेगा। एक पर्वत है और उस पर्वत के ऊपर एक किला है और किले तक पहुंचने के लिए 500 सीढ़ियां है जो उस अद्भुत ऐतिहासिक दिव्य कवच को पहनकर ऊपर तक पहुंचेगा। उसको कवच सहित मेरी बेटी मिलेगी। हजारों युवक आते हैं परंतु जैसे ही कवच को धारण करते हैं वो इतना भारी है, इतना भारी है और इतना भारी है कि उसको पहनकर चलना भी मुश्किल है। फिर भी सब कोशिश करते हैं। पहली सीढ़ी तक तो बहुत कम ही चढ़ पाते हैं। जैसे ही पहली सीढ़ी चढ़ते हैं आधे तो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं क्योंकि कवच का भार बहुत अधिक है। कई दूसरी सीढ़ी तक पहुंचते हैं और जैसे ऊपर देखते हैं बेहोश होकर नीचे। कई तीसरी सीढ़ी तक भी पहुंचते हैं, कई चौथी तक भी पहुंचते हैं, कई बहुत बहुत हिम्मत करके पांचवी तक पहुंचते हैं। पर जब जब जो जो ऊपर देखता है बाकी सीढ़ियों को हिम्मत खो बैठता है। कोई छठवीं सीढ़ी तक पहुंचता है, कोई सातवीं, बस यहां तक पहुंच पाते हैं और बहुत समय तक कोई भी नहीं आता, कोई हिम्मत नहीं करता। उनकी हालत देखकर जो चढ़े थे, परंतु बहुत समय बाद एक युवक आता है। वो कहता है ये कार्य मैं कर दिखाऊंगा और उसकी वाणी में एक अद्भुत ऊर्जा, इच्छा शक्ति, दृढ़ता, बल, साहस, शौर्य और वो चढ़ता है पहली सीढ़ी और लंबी सांस लेता है, दूसरी सीढ़ी और लंबी सांस लेता है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और जैसे ही आठवीं सीढ़ी पर पांव रखता है अचानक एक शक्ति उसे सीधा ऊपर तक पहुंचा देती है किले तक। क्योंकि राजा ने एक आठवीं सीढ़ी के पास एक शक्तिशाली चुंबक रखा था पर वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। ये एक ही था जो पहुंच गया और जैसे ही आठवीं सीढ़ी इसने पार की उस चुंबक ने उसे ऐसा खींच लिया कि सीधा ऊपर पहुंच गया और वो विजयी हुआ और वो जीत गया और उसे वो दिव्य कवच भी मिल गया और उसका विवाह भी हो गया। योग भी एक दिव्य कवच है पर पहली सीढ़ियां थोड़ी कठिन है, परंतु यदि उनको पार कर लिया जाए तो एक अद्भुत चुंबकीय आकर्षण ऊपर से आएगा और आत्मा को और चेतना को सीधा ऊपर पहुंचा देगा। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक दिव्य कवच की जिसका नाम है योग का दिव्य कवच। 31 जुलाई अभी अभी स्लोगन आया था, योग एक ऐसा दिव्य कवच है जो माया रूपी दुश्मन उस पर वार नहीं कर सकते, स्लोगन था। तो हम चर्चा करेंगे ये दिव्य कवच क्या है, वो कौन सी 8 सीढ़ियां है जो पार करते ही सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं और ये कवच भी प्राप्त हो जाता है। जो पहले भारी था वो फिर हल्का हो जाता है। योग के कवच या योग की ऐसी 8 सीढ़ियां। दूसरा भाग योग की 8 अवस्थाएं है और तीसरा भाग इस कवच की कुछ विशेषताएं, ऐसी 16 विशेषताएं। तो इस क्लास में हम ये 3 बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले वो कौन सी 8 स्टेजेस है जो क्रॉस करो या जिनकी बहुत आवश्यकता है या जिनके बिना योग असंभव है या जिनकी आवश्यकता के बिना योग लग ही नहीं सकता। और हर ब्राह्मण आत्मा में वो 8 चीजें होनी चाहिए। वो होगी तब योग सहज होगा। एक भी कम तो ऊपर से चुंबक नहीं खींचेगा। दूसरा, ये जो कवच है ये कैसा है, इस कवच की कुछ विशेषता है, ऐसी 16 विशेषता है। और तीसरा बताया योग की वो कौन सी अवस्थाएं है। उन 8 में से सारे दिन भर कोई ना कोई एक अवस्था रहे तो स्थिति ऊपर रहेगी, नहीं तो वियोग की अवस्था होगी, दुख की अवस्था होगी, पीड़ा की अवस्था होगी, पश्चाताप की अवस्था होगी। बाबा ने कहा है यदि अब तुमने मेरी नहीं मानी तो धर्मराज के दंडे खाने पड़ेंगे। वो धर्मराज के दंडे क्या है, वो धर्मराज का दंड क्या है, स्थिति का गिर जाना ही धर्मराज का दंड है। कोई धर्मराज कहीं बैठा नहीं है। अमृत वेले का रस समाप्त हो जाना ही धर्मराज का दंड है। मुरली सुनते समय बुद्धि का भटकना ही धर्मराज का दंड है। सारे दिन भर सेवाओं में कोई उमंग उत्साह नहीं है, यही धर्मराज का दंड है। रात को सोते समय विकारी स्वप्नों का आना, व्यर्थ स्वप्नों का आना या नींद ही ना आना, अनिद्रा धर्मराज का दंड है। योग के समय नींद आना धर्मराज का दंड है। योग के लिए 8 चीजें चाहिए, 8 सीढ़ियां। सबसे पहले परमात्मा प्रेम। यदि उस परमात्मा से प्रेम ही नहीं, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, क्या तीव्रता है, जब तक वो तीव्रता नहीं, जब तक प्रेम में वो जुनून नहीं, वो फितूर नहीं, वो देवांगी नहीं, वो आशिकी नहीं, तब तक योग अपूर्ण है, योग अधूरा है, वो भटकता हुआ योग है, योग रादर है ही नहीं। शक्तिशाली योग के लिए शक्तिशाली प्रेम की आवश्यकता है। जैसे एक माँ है जो यहां है और उसका बेटा कहीं दूर, उसे किसी बात की आवश्यकता नहीं, उससे योग लगाने के लिए सहज योग लगता है क्योंकि अगाध प्रेम है। क्या बाबा से हमारा ऐसा अटूट अगाध अखंड प्रेम है। कुछ दिनों पहले अव्यक्त वाणी चली थी, स्नेह संबंध और सेवा। स्नेह की 3 बातें, संबंध की 3 बातें और सेवाओं की 4 बातें। स्नेह में प्रश्न पूछे थे बाबा ने, स्नेह कैसा है, आवश्यकता प्रमाण है, मतलब का तो नहीं, हर समय है और दिल को खुश करने वाला तो नहीं, ये 3 प्रश्न थे। हमारा प्रेम कैसा है, उससे क्या प्रेम की वो धारा, प्रेम की वो अविरल धारा निरंतर बहती रहती है, निरंतर कोई आवाज पुकारते रहती है, निरंतर उसका प्यार पुकारते रहता है, खींचते रहता है कि संसार और संसार के गटर में डूबे रहते हैं हम। सुबह कहा बाबा ने आज, काम गटर है। स्लोगन में कहा मिट्टी, मिट्टी से खेलना बंद करो। देह को देखना मिट्टी से खेलना है, देह की आसक्ति मिट्टी से खेलना है, देह की वासना, देह के भोग, देह की स्मृतियां, देह को स्पर्श करना और सुख का अनुभव करना जो मिट्टी से खेलना है। संसार के सारे मनोरंजन, सम टोटल ऑफ ऑल मूवीज, सारे फिल्में उसी देह के इर्द गिर्द मंडराते हैं, घूमते हैं। इन सभी से वैराग, स्वयं को देखना है मेरा परमात्मा प्रेम कैसा है, और बाबा से प्यार अर्थात 10 चीजों से प्यार। एक भी कम ना हो। बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, भगवान से प्यार बहुत है परंतु मुरली वही 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 वही, कल की साकार मुरली। बच्चे कहते बाबा आप वही वही सुनाते हो, तुम तो कहो ना कभी कि बाबा हम सतो प्रधान बन के रहेंगे, अब आप छूटे, तुम ऐसा कहो तो मैं चला जाऊंगा, पर तुम कहते ही नहीं। तुम कह दो कि आप तो छूटे, अब हम बन के दिखाएंगे। इसलिए बाप को बार बार वही बात समझानी पड़ती है क्योंकि तुम करते ही नहीं हो। एक ही तो बात बता रहा हूं कब से, पवित्रता पवित्रता पवित्रता, चीख चीख के कह रहा हूं। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं जिसे एक अंतिम जन्म पवित्र रहो। बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके सिखाए हुए योग से प्यार, उस प्राचीन योग से प्यार जो लुप्त प्राय हो चुका था। बाप से प्यार अर्थात उसकी सेवा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, और मधुबन से प्यार अर्थात मधुबन की कोई भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना, चाय, भोजन, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, कमरा, जैसे कमरे में आए थे जाते समय वैसा ही कमरा छोड़ के जाना है, एक सिलवट भी ना हो। जिस तरह बाथरूम लिया था वैसे ही छोड़ के जाना, उतना ही स्वच्छ। ब्रह्मा भोजन है, ढेर सारा ले लिया आधा छोड़ दिया। यहां आए थे पुण्य कमाने, सर पर पाप की गठरी नई बांध कर लेने ही जानी है। भंडारा है वहां जाकर देखना, बोर्ड लगा हुआ है अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 1988। ये ब्रह्मा भोजन है, दुख भंजक भोजन है, इसका इसमें दया, इसमें दुआ है तो दवा भी है। एक एक कणा मोहर के जैसा है। यदि हम यहां आके भोजन वेस्ट कर रहे हैं, ये भोजन कहां से आ रहा है? कहीं दूर कोई माता बैठी है, एक रोज 1 रुपया डालती है भंडारी में। परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा, साहूकारों के पैसों से नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, फैन, ट्यूबलाइट, भोजन, रिसोर्सेस, पेट्रोल, डीजल, हर चीज। बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, मधुबन से प्यार अर्थात मधुबन की हर बात से प्यार। लास्ट संडे की मुरली, मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। यहां आकर यहां के लोगों की निंदा, ग्लानी, अवगुण देखना, ये ऐसा क्यों करते हैं, वो वैसा क्यों करते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा क्यों है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने आए थे या तपस्या करने आए थे, मधुबन निवासी अर्थात स्टेज पर लास्ट संडे की मुरली, मधुबन निवासी अर्थात जिनके बोल पांच चीजें मोती योगी वर्षा, जिनके बोल प्रेरणादायी, हम भी ऐसा बोले, हम भी इनसे सीखे, रिकॉर्ड करने जैसे मधुबन के निवासियों के बोल अर्थात जिसके प्रकंपन विश्व में फैले। और पांचवा महान, अभी अभी मुरली चली थी लास्ट संडे, तो भगवान से प्यार अर्थात उसके मधुबन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात पवित्रता से प्यार, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सेवा केंद्र से प्यार, जितना प्यार मधुबन से उतना सेवा केंद्र से, और बाप से प्यार अर्थात जो सेंटर की निमित्त बहन है, भाई है, जो भी निमित्त आत्मा है उससे भी प्यार। भगवान से प्यार है, यज्ञ से प्यार है, मुरली से प्यार है, पर उस आत्मा से प्यार नहीं है। क्या ये समझा कि उस आत्मा को किसने वहां बिठाया? किसी मुरली में बाबा ने कहा, हम बच्चे कहते बाबा हम निमित्त से खुश नहीं है। बाप का उत्तर था, क्या बाप बुद्धू है? जो उसको निमित्त बनाया, दस बातों से प्यार। तो सबसे पहला योग का कवच का सबसे पहला आधार परमात्म प्रेम। क्या ऐसा धड़कता प्रेम हमारे जहन में है, इतना प्यार। भक्तों ने भगवान को जाना भी नहीं था, फिर भी न्योछावर कर दिया स्वयं को। जिस राजस्थान में कभी घूंघट नहीं उठाया किसी स्त्री ने, रास्तों पर, गलियों में, सड़कों पर नाचते गाती फिरी मीरा, क्या हमारा प्रेम भी ऐसा है? यह लोक लाज में बंद है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे। भक्त पागल थे प्रभु प्रेम में, और वो कौन थे, हम ही थे। कैसा नशा और कैसा फितूर चढ़ा था उनको, क्या हमारा प्रेम भी वैसा है? यदि योग नहीं लगता तो प्रेम की कमी है। प्रेम को पढ़ाओ, जितना प्यार एक मां का एक बेटे से है, जितना प्यार एक लोभी व्यक्ति का धन से है, और जितना प्यार एक कामी पुरुष का स्त्री की देह से है, तीनों मिलकर वो प्रेम जब प्रभु की ओर बढ़ जाए तब वो प्रकट होगा। इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है प्रेम की। योग लगता नहीं, योग में बुद्धि भटकती है। हजम करो, बाबा ने आज सुबह कहा था, बाप की ताकत को, रूहानी हाजमा। कैसा है हाजमा रूहानी? स्पिरिचुअल इंडाइजेशन, रूहानी अपच तो नहीं है। दूसरा आधार प्रभु प्रेम, योग का दूसरा आधार है संपूर्ण पवित्रता। सुबह की साकार मुरली, सारा मदार है धारणा पर। सुबह की साकार मुरली देवताओं के सामने शुद्ध भोजन रखा जाता है। सुबह की साकार मुरली ग्रंथ के सामने कभी बीड़ी सिगरेट नहीं रखी जाती। सुबह की साकार मुरली प्राप्ति तुमको इतनी है, स्वर्ग की बादशाही मिलती, एक जन्म भी पवित्र नहीं रह सकते। Cannot you sacrifice lust for one birth? क्या एक जन्म के लिए काम को नहीं छोड़ सकते? जो काम जीत है वही जगत जीत है। जो अभी तक काम की काई पर अब तक फिसल रहे हैं, बहुत ऊंची अवस्थाओं को कैसे प्राप्त करेंगे? 8 स्टेजेस क्रॉस करने, फिर खींचे जाएंगे ऊपर, तब तक नहीं। दूसरा, संपूर्ण पवित्रता। मधुबन में आए हैं सभी, कुमार भी है, अधर कुमार है, माताएं हैं, कन्याएं हैं, सभी यहां से प्रतिज्ञा करके जानी है। अभी अभी मुरली चली थी लास्ट संडे, वो जहां त्रिवेणी मिलती है वो अलाहाबाद है, ये अल्लाह का आबाद किया हुआ स्थान है। मुरली चली ना संडे, मधुबन क्या है? अल्लाह का आबाद किया हुआ स्थान, अल्लाहाबाद। इस पवित्र स्थान पर प्रतिज्ञा करके जानी है, कुछ भी हो जाए ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ेंगे। बच्चे बाप से पूछते, बाबा क्या करे? मां बाप कहते हैं शादी करो। बाप कहते हैं क्या? साकार मुरली इन्वर्टेड कॉमा। बच्चे कहते हैं बाबा, मां बाप कहते हैं जबरदस्ती कर रहे हैं शादी करो। बाप कहते हैं सिर भी कट जाए, पवित्रता का मार्ग न छोड़ना। साकार महावाक्य है बाबा के। दूसरा आधार योग का, संपूर्ण पवित्रता। विकारी ख्यालात ना है, विकारी नाता ना हो किसी व्यक्ति से। आज की मुरली रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, शरीर को देखना बंद करो। स्टॉप दैट लस्टफुल आई। इस प्रतिज्ञा को धारण करना है और इसके लिए दृढ़ता चाहिए। और महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करती है। भीष्म ने कितनी बार प्रतिज्ञा की थी? 10 बार या एक बार? एक बार कर ली वो, कर ली बस। और एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद फिर दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था। एक ही मार्ग है, जो होगा अब इसी मार्ग पर होगा, दूसरी तरफ देखना ही नहीं है। जगदीश भाई जी उदाहरण देते थे, वो लंबा झाड़ू होता है ना, और वो झाड़ू लगाती है, इधर देखते ही नहीं, बस एक ही तरफ देखते रहो, इधर देखना ही नहीं है, इधर क्या हो रहा है, उधर नरक है। आज सुबह की साकार मुरली विषय वैतरणी नरक में गोते खाते हैं, यही किया। विशेष दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है, वेश्यालय बन, दो शब्दों को याद रखो तो सदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। किसने निकाले आज साकार की मुरली, साकार मुरली का होमवर्क? एक बहन ने हमको लिस्ट भेजी है 1334 दो शब्दों की। कितना मंथन किया होगा दिन भर, होमवर्क दिया है बाबा ने। कुछ दिन पहले होमवर्क आया था 101 दुखों की लिस्ट निकालो, निकाली। रोज का होमवर्क करना है, मुरलियों में आता है। दूसरा आधार पवित्रता, तीसरा आधार वैराग्य। तीन प्रकार के वैराग्य है, तीव्र, मध्यम, मंद। मंद वैराग से काम नहीं चलेगा, मध्यम वैराग से काम नहीं चलेगा, धधकता वैराग चाहिए, तीव्र वैराग चाहिए। यहां का कुछ भी नहीं चाहिए। दादी ने कहा है, कौन ऐसा है जो दूसरे स्थान पर जाता है चाहे विदेश या भारत में किसी स्थान पर, और कुछ भी खरीदने की इच्छा नहीं होती है। ये खरीदू वो खरीदू, ये है नष्ट मोहा, ये है मोह जीत, ये है लोभ से मुक्ति। मैं ट्रायल करती हूं, दादी ने कहा और किए है, कोई दूसरी जगह जाए और वहां से कुछ भी ना खरीद के आ जाए, पर्स जूते जैकेट, यहां का वो अच्छा है वहां का वो अच्छा है, मतलब अभी बहुत इच्छा है बाकी है, ये हमारे वहां काम आएगा, ये हमारे वहां काम आएगा। ये भी एक संस्कार है और आदत भी है, खरीदू कुछ लू कुछ। वैराग, मधुबन निवासी अर्थात मधु और वन, बेहत के वैरागी। चौथा एकाग्रता, बिना एकाग्रता के योग संभव नहीं है, इसके लिए एकाग्रता को साधना है। एकाग्रता अपने आप में एक साधना है। यहां क्लास में बैठे कितना बुद्धि मन एकाग्र है, जो शब्द कानों पर पड़ रहे हैं, केवल कानों तक पड़ रहे हैं, या दिल का पता ढूंढ रहे हैं, केवल सुनना नहीं है, सुनते सुनते अपनी चेकिंग करनी है। सुनते सुनते ही त्याग कर देना है जो चीज रोक रही है आगे बढ़ने से, हर वो चीज जो मेरे और पुरुषार्थ के बीच है, हर वो चीज जो बाबा और मेरे बीच है, हर वो चीज जो योग और मेरे बीच है, विष की तरह उसका त्याग कर देना है। लाइक अ पॉइजन, मन को बहुत सौम्य रूप से समझा लिया, कभी कभी विकराल रूप धारण करके चीजों को छोड़ना होता है संकल्प से। आज सुन लिया, कल से देखता हूं, कल से नहीं अभी। एक व्यक्ति कहता था अपनी पत्नी से रोज, मैं सोच रहा हूं संन्यास ले लूं, सब छोड़ दूं, संसार माया है, मोह ममता सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। सालों गुजर गए, रोज ही कहता है। उसकी पत्नी का भाई था, उसने कहा वैराग ऐसा थोड़ी लिया जाता है, तो बोलते तुम बताओ कैसे लिया जाता है, और वो पत्नी का भाई कहता है ऐसे, और छोड़ के चला जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता है। किसी से पूछा थोड़ी जाता है, किसी से राय मशवरा थोड़ी किया जाता है, सुरक्षा तो है ना इस समर्पण के जीवन में, पूछा जाता है क्या? पूछना अर्थात असुरक्षा का भाव, पूछना अर्थात निश्चय की कमी। एकाग्रता, तपस्या एकाग्रता, अभ्यास करना है। एक जगह बैठ के मुरली में क्या क्या था सारी पॉइंट्स याद करने की कोशिश करो, मन एकाग्र होगा। मन को परम धाम में एकाग्र करने का अभ्यास, सूक्ष्म वतन में बाबा पर एकाग्र करने का अभ्यास। जो सेवा मिली है उस पर एकाग्रता का अभ्यास, हर चीज में एकाग्रता का अभ्यास। सारी हर तरफ एकाग्रता होगी तब योग में भी एकाग्रता होगी। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक इन माय चाइल्डहुड, आई विल फर्स्ट मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन विथ वन गो मास्टर ऑल द इंफॉर्मेशन। यदि मुझे फिर से अवसर दिया जाए तो मैं पहले बचपन में चला जाऊं तो सबसे पहले एकाग्रता को साधूंगा, और उसके बाद ये सारा ज्ञान और सूचनाएं ढक से हप कर लूंगा, क्योंकि बुद्धि स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है, विभाजित है, खंडित है, श्रेजोफ्रेणिक है, इसलिए एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता को साधना है, भोजन कर रहे खाली भोजन ही करना है, एकाग्रता। भोजन बना रहे, केवल भोजन बनाना है और कुछ नहीं। चल रहे, केवल चल रहे। बैठे हैं, केवल बैठे हैं। एकाग्रता का अभ्यास। प्रकृति के सानिध्य में केवल प्रकृति में डूब जाना है। एकाग्रता। मुरली सुन रहे, केवल सुनना है। पढ़ रहे हैं, वो केवल पढ़ना हो, इतना गहराई से कि ग्रहण हो जाए। शब्द शब्द ना रहे, नाचते हुए संगीत के स्वर हो, अमृत की धारा हो, गिरती हुई बारिश हो। अगला मर्यादा है। सारे दिन भर मर्यादाएं टूट रही है और सोच रहे हैं अमृत वेला शक्तिशाली होगा, असंभव। आज के मुरली में भी ये शब्द आया है, वो सन्यासी कहते शादी कर पवित्रता, पवित्र रहना इम्पॉसिबल, बाप कहते हैं पॉसिबल है। मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। ये खाऊं और वो खाऊं, ये मशीन का बना हुआ है, ये चलता है, इसके लिए बाबा ने कुछ नहीं कहा है। नया बीके परिवार ज्ञान में आया, शादी में गया, समोसा परोसा गया, उसको तोड़ा और आलू खाने लगा। ऐसा क्यों? हम बाहर का नहीं खाते, हम अंदर का खाते हैं। मन ही मन को छलता है, नई नई युक्तियां बनाता है। सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस। ठीक, ये ठीक नहीं लग रहा है श्रीमत, इसको जरा ठोक फिट, इसको जरा सा ठीक करता हूं। हाँ, अब ठीक है, मेरे टाइप का। श्रीमत से छेड़छाड़ नहीं करनी है। इट इज नॉट माय वे योर वे, इट इज द वे। तुम्हारी मत मेरी मत नहीं है, इट इज द वे। यही मार्ग है बस। मर्यादा है, मर्यादाओं को रिवाइज करना है। ब्राह्मण जीवन की क्या क्या है? पहले मन में मन रिवाइज करना, एकांत के किसी स्थान में जाकर, मधुबन में ही बैठकर रिवाइज करना, मुझे कितनी मर्यादाएं पता है टोटल, और कितनी मैं फॉलो कर रहा हूं। और फिर कहीं पढ़ना, मर्यादाओं की एक लिस्ट है, वो मिल जाएगी आपको कहीं पर भी। उसके बाद है प्रैक्टिस। योग की अगली सीढ़ी है प्रैक्टिस, सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास। एक बार लगा नहीं हुआ, छोड़ नहीं देना है। लंबी यात्रा है योग की। आज का है माया दुस्तर है, योग में ही विघ्न डालती है, एकदम ज्ञान को उड़ा देती है। कैसे शब्द आए मुरली में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रसरिया बत जाते हैं, सिल पर पड़त निशान, सिल पर ऐसे ही निशान नहीं पड़ेंगे। सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। आज नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, अब करेंगे। फिर से करो, फिर से कोशिश करो, करते ही जाना है। क्योंकि भगवान कह रहा है होगा, वो आशावादी है। संपूर्णता धोखा नहीं है। परफेक्शन इज नॉट अ डिसेप्शन। जरूर कोई तो बना था, हम भी बनेंगे। अगला विधि, मेथड। विधि ही गलत है तो योग नहीं लगेगा। योग की विधि सीखनी है, बहुत सारी ऑडियोज है, कैसेट्स है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तव में योग व्यक्ति कहीं से नहीं सीखता है, अपने अनुभव से ही सीखता है। जैसे जैसे इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे और गहराई में उतरते जाएंगे, नए अनुभव आएंगे, तब अपने आप सीखते जाएगा। नए नए नई नई विधियां योग की, जो एक सिखाई थी हमको कभी वही अब तक चालू है, 10 साल हो गए, मैं आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मुझसे किरणें फैल रही है। शिव बाबा परम धाम में गया, तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, फिर उधर से उधर गया, फिर उधर से उधर गया, काम पूरा हुआ, चलो सोने, अमृत वेला पूरा हुआ, बिस्तर पुकार रहा है, 1 घंटा है, अच्छी नींद हो जाएगी, फिर अमृत वेला, फिर उठ के मुरली में जाएंगे। लास्ट लक्ष्य एम, निर्लक्ष्य होकर यदि योग में बैठ रहे तो कोई अनुभूति नहीं होगी। योग में बैठना है तो कोई ना कोई अभ्यास, क्या अभ्यास करूं, कल सुबह अमृत वेला फरिश्ते का करूं या और कुछ करूं, या सर्व संबंधों का करूं या केवल बीज रूप का करूं। 8 ये हो गई 8 सीढ़ियां, अब है 8 योग की अवस्था है। सबसे पहला है, इसको बहुत 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 ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं वो किसी एक मुरली से नहीं है, सारी की सारी अव्यक्त वाणियों से, यहां वहां से जो बिखरी पड़ी है उसमें से धुन धुन के सोच सोच के चिंतन कर करके निकाली हुई बातें हैं और बाबा के महावाक्य है। सबसे पहली स्थिति है अशरीरीपन। अशरीरीपन आत्मा की वो अवस्था है जहां शरीर नहीं है, अर्थात वो इस शरीर की अवस्था नहीं है, अर्थात वो सूक्ष्म वतन की भी नहीं है, वो परम धाम की जो अवस्था है उसको कहा है अशरीरी, जहां कोई शरीर नहीं है। परंतु ये 8 अवस्था है, बाबा ने कई मुरलियों में इस तरीके से भी प्रयोग किया है कि एक ही है, डिस्टिंक्शन कहीं कहीं किया है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं किया है, कहीं कहीं ये अवस्था और वो अवस्था और वो अवस्था एक ही है। पर किन किन मुरलियों में 70s की जो विशेष विशेष उस टॉपिक पर चली है उसमें ऐसी कुछ बातें कही है। परम धाम की जो अवस्था है वो अशरीरी अवस्था है, फर्स्ट। सेकंड है आत्म अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी स्थिति वो अवस्था है आत्मा की जिसमें 7 गुणों का चिंतन है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, सुख शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। ये जो 7 अवस्था वाली स्टेज है वो है आत्म अभिमानी स्थिति। तीसरा है अव्यक्त स्थिति। ए लिखो, ए के पास में ये 3, अव्यक्त अर्थात व्यक्त भान से परे, अव्यक्त अर्थात व्यक्त आवाज से, व्यक्त दुनिया से, व्यक्त बातचीत से, व्यक्त बोलचाल से, व्यक्त कर्मों से, अर्थात एक साइलेंस की अवस्था है व्यक्त अव्यक्त। तो ए से 3 बातें हैं, अशरीरी, आत्माभिमानी और अव्यक्त, ए फॉर 3 स्टेजेस। बी अर्थात बीज रूप स्थिति, ये स्थिति केवल और केवल परम धाम की है, जिसको बाबा ने ज्वालामुखी योग कहा है। मैं आत्मा बीज हूं, सीधा इस अवस्था तक नहीं पहुंचा जाएगा, बहुत सारी चीजें नीचे करनी पड़ेगी, संसार से बुद्धि हटे, देह से बुद्धि हटे, सूक्ष्म वतन में गए, बाबा से रूह रिहान किया, सूक्ष्म वतन शरीर वहां छोड़ा और फिर परम धाम में गए, और वहां जो निरसंकल्प अवस्था है वो है बीज अवस्था। इस अवस्था में विकर्म विनाश होंगे, बाकी अवस्थाओं में नहीं। चौथी है बीज, बी फॉर बीज, सी अर्थात कंबाइंड स्टेज। मैं और शिव बाबा कंबाइंड, यह अवस्था परम धाम की भी है और साकार वतन की भी है। परम धाम की ऐसे कि मैं बीज और वो बीज, मैं ज्योति और वो ज्योति, हम दोनों मिल गए, हम दोनों अब एक है, मैं फादर एंड आई आर वन। दूसरा कंबाइंड स्थिति इस साकार वतन की, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, मैं और वो कंबाइंड हूं, हम अकेला, मैं अकेला नहीं हूं, अकेले जा रहे हैं कहीं से, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, सुन सन्नाटा है, मैं अकेला नहीं हूं, बाबा मेरे साथ है, कठिन परिस्थिति आ गई है जीवन में, मैं अकेला नहीं हूं, मैं कंबाइंड हूं। तो कंबाइंड स्थिति वो जो बीज वाली अवस्था है वो भी है और इस साकार वतन की भी है, तो सी फॉर कंबाइंड। उसके बाद में डी, देही अभिमानी स्थिति। इसके पहले हो गया था अशरीरी अर्थात परम धाम, बाद में हुआ था अव्यक्त अर्थात व्यक्त भान से परे, उसके बाद हुआ था देह आत्माभिमानी, पांच स्वरूपों वाली, सात स्वरूपों वाली, अब है देही अभिमानी स्थिति। इसका वर्णन 70s की मुरलियों में आया है, देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा मालिक हूं सभी कर्मेंद्रियों की, मैं आत्मा मालिक हूं सभी कर्मेंद्रियों की, यह है देही अभिमानी। उसके बाद में ई, ई का डायरेक्ट नहीं है पर हम इसको लेंगे विदेही, विदेही ई अर्थात विदेही, विदेही स्थिति क्या है? अब कंफ्यूजन चालू हो रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, विदेही स्थिति अर्थात करण करावन हार मैं आत्मा हूं कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं, यह अव्यक्त संदेश है 69 के, उसमें कहा हुआ है बाबा ने, यह विदेही स्थिति है मैं आत्मा करण करावन हार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं, और देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा मालिक हूं इन कर्मेंद्रियों की, ये कर्मेंद्रिया मेरे गुलाम है, मैं मालिक हूं, और यहां पर मैं करण करावनहार हूं। अगली अवस्था है फरिश्ता, जो सभी जानते हैं, जिसमें आत्मा दो शरीरों में विराजमान है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। आठ योग की अवस्था है, सारे दिन भर में इनमें से किसी ना किसी एक अवस्था में रहना है, अमृत वेला बीज रूप, सारे दिन भर या तो विदेही या देही, बीच बीच में अशरीरी हो जाना, ड्रिल करना, मैं आत्मा उड़कर चली गई परमधाम, टच किया वापस आ गई, अशरीरी हुई वापस आ गई, ये ड्रिल करते रहना है ताकि शरीर का भान कम कम रहे, फरिश्ता चलता फिरता फरिश्ता हो, अव्यक्त साइलेंस की अवस्था हो, किसी से कुछ बात करने की इच्छा नहीं, किसी से कुछ भी बात करने की इच्छा नहीं, ऐसा लगता है चुप रहूं, याद में रहूं, बस ऐसी खींचो, बोलने का काम भी पड़े बोल दिया और काम पूरा हुआ ऊपर, यदि कोई आके ना बोले तो खुद से तो कभी बोले ही नहीं, डू नॉट स्पीक अनलेस स्पोकन टू, ये बहुत अच्छी अवस्था है। तो ये योग की आठ अवस्था है, पहली बताई अशरीरी परमधाम, दूसरी बताई आत्माभिमानी सात गुण, जिसमें जिसमें सात गुणों का चिंतन चल रहा है, तीसरी बताई अव्यक्त, चौथी बताई बी और बीज रूप, उसके बाद में कंबाइंड बाबा से कंबाइंड परमधाम में या तो यहां, उसके बाद में देही अभिमानी, देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा मालिक हूं इन कर्मेंद्रियों की, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, उसके बाद में विदेही, विदेही अर्थात मैं आत्मा करण करावनहार हूं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं, इसमें यह भी ऐड कर सकते बाबा करण करावनहार है वह आत्मा करणहार हूं, वो मेरे द्वारा करा रहा है और मैं कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही हूं, ये सारे दिन भर में कर्मयोग की स्थिति है। सुबह अमृत वेला ज्यादा से ज्यादा बीज रूप स्थिति अशरीर स्थिति इसका अभ्यास ज्यादा हो, अमृत वेला सारे दिन भर फरिश्ता देही विदेही या अव्यक्त और बीच बीच में अशरीरी और लास्ट फरिश्ता। तो ये योग की आठ अवस्था, अभी चलते हैं योग के कवच की तरफ। इस कवच की 16 विशेषताएं हैं, 16 कला संपूर्ण बनना है तो ये कवच धारण करना पड़ेगा। आठ स्टेजेस को क्रॉस किया, चुंबक अभी खींच रहा है, एकदम खींच लेगा। सबसे पहला ये जो योग का कवच है इनविजिबल है, अदृश्य है, दिखता नहीं है, कितना अच्छा है कि हम कवच पहन के निकल रहे और दुश्मन को लगा कि देखो निहत्ता है मारो और मारे और हमको कुछ भी ना हो, ये खेल ही अदृश्य का है, संगम पर बाप अदृश्य बच्चे अदृश्य ज्ञान अदृश्य योग अदृश्य धारणाएं अदृश्य सेवाएं प्रत्यक्ष हो रही है, अनादि शूटिंग सुबह की साकार मुरली हो चुकी है। पहला अदृश्य है इनविजिबल, दूसरा ये कवच अजेय है इनविंसिबल, ये कवच कैसा है? ये कवच पहन के निकलो, कोई हरा नहीं सकता, हार हो ही नहीं सकती, ऐसा कवच है ये। क्योंकि कवच में वो आठ चीजें भरी है, ठूस ठूस कर पवित्रता भरी है, वैराग्य भरा है, प्रभु प्रेम भरा है, मर्यादाएं भरी है, विधि है, प्रैक्टिस है, लक्ष्य है, एकाग्रता है, आठ वो चीजें भरी है ठूस ठूस के। तो जो ऐसा कवच पहनेगा उसकी हार होगी क्या? कभी कभी नहीं। तीसरा इनसेपरेबल है ये। ये वैसा कवच नहीं आज पहनो फिर निकालो, फिर पहनो फिर निकालो, ये कर्ण का कवच है, लगा हुआ है पूरा, शक्तिशाली है बहुत, इनसेपरेबल है। तीसरा उसके बाद में अविनाशी है, इम्पेरिशेबल, बड़ा टिकाऊ है, अनब्रेकेबल है, गिरने से टूटता नहीं है। कभी कभी दुकान वाले कुछ दिखाते उसके ऊपर खड़े हो जाते दिखाने के लिए कि देखो ये बिल्कुल मजबूत है। तो ये कवच तो ऐसा है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता, टूटता नहीं है कभी ये, और अविनाशी है। अगला इम्पेनेट्रेबल, अभेद है, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, माया प्रूफ है। सारे दिन भर कैसे भी एरिया में चले जाओ जहां पर विकार ही विकार है, वहां पर भी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, क्योंकि संसार में काम की आंधी है, हवाओं में काम है। आज बाबा ने वेश्यालय कहा इस संसार को, बाजार लगा पड़ा है यहां, फ्लैश ट्रेड। परंतु जो योग का कवच पहन के निकलते हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है जाओ मेरा संदेश सबको सुनाओ, वो कहते हैं हम कैसे जाएं, लोग पहले ही तुमसे नफरत करते हैं, लोग पहले ही तुम्हारे विरोध में हैं, हमको वो लोग मारेंगे। वो कहता है गो, यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड, तुम्हारे सिर पे जो बाल है ना मैंने गिन के रखे, कुछ नहीं होगा, एक बाल भी कम नहीं होगा, यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड। क्योंकि संदेश किसका देने जा रहे हो? मेरा। ये पांच फिर ये बड़ा लाइट है, कहानी वाला बड़ा भारी था, बाद में हल्का हुआ, ये भी हो सकता है पहले पहले भारी है, पर ये कवच बहुत हल्का है। सेवेंथ, वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली कवच है ये। ऐसा कवच आज तक किसी भी योद्धा को, किसी भी राजा को नहीं प्राप्त हुआ जो हमें प्राप्त हुआ है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आठ चीजें जो बताई, कितना काम करना पड़ेगा उनके ऊपर, उन सीढ़ियों पर जी जान लगा देना पड़ेगा तो ये कवच मिलेगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली अर्थात बड़ी आसान है, आसानी से पहना जाता है, सहज तरीके से यूज किया जाता है, ऐसा ये कवच है, जिसको यूजर फ्रेंडली मॉडर्न भाषा में कहा जाता है। उसके बाद में ये कवच, वो जो कवच है केवल इतना हिस्सा कवर करता है, ये संपूर्ण आत्मा को और संपूर्ण शरीर को कवर कर लेता है। जिसने योग का कवच पहन लिया उसे बीमारियां भी इतनी दुखदाई नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि बीमारियां कभी भी किसी को भी कोई भी आ सकती है। अचानक पता चले कैंसर, लास्ट स्टेज, अचानक पता चले कैंसर, अभी कीमो और बहुत सारे दृश्य सामने आने लगते हैं, अचानक एक्सीडेंट, अचानक कुछ भी, बीमारियों का कोई ठिकाना नहीं है। एक प्रश्न सभी से पूछते होंगे, लोग आपसे पूछते होंगे कि आप लोग योग करते हो या आपकी दादियां योगी इतने हैं फिर भी उनको बीमारियां क्यों, क्या उत्तर देंगे? कर्मों का लेन देन उनको समझ में नहीं आता है, वो अलौकिक आध्यात्मिक कारण नहीं बताने। दूसरे बताओ। नहीं नहीं, वो वाला प्रश्न नहीं है। बीमारियां ही क्यों है? आप कहते हो राजयोग से आयु बढ़ती है, राजयोग से बीमारियां नहीं होती है, हेल्दी होते हैं, तो बीमारी क्यों है? वो सब कारण नहीं बताना, कर्मों का हिसाब किताब और वो सब चीजें, उसके भी कुछ कारण जो उनको बताए जा सकते, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है। सबसे पहली बात तो जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, चाहे कोई कितना भी योगी हो उसका असर तो होगा। एक, कुछ बीमारियां है जेनेटिक है, आनुवंशिक बीमारियां है। तीसरा, इन्फेक्शियस डिसीजेस, ये कुछ साइंटिफिक रीजन है, ऐसे रीजन भी आपको चाहिए आपके पास। एक को सर्दी खांसी हुई, दूसरे को भी हुई, उसके संपर्क में आया हुआ। अब वो कितना भी योगी है और कितना भी कितने सालों से योग करता है, पर शरीर तो तमो प्रधान है ना, कीटनाशक, एटमॉस्फेयर पॉइजनस है, एयर पोल्यूशन, क्या क्या केमिकल्स है इसमें, कुछ इस तरह के भी कारण दिए जा सकते हैं यदि सामने वाला केवल साइंस की भाषा समझता है तो। अगर आध्यात्मिक है तो फिर तो सभी बहुत एक्सपर्ट है एक घंटा सुना सकते हैं उसको, चुप हो जाएगा वो। जेनेटिक, एक व्यक्ति 20 साल 25 साल 50 साल तक सिगरेट पीता है उसको कुछ नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति 10 साल पिया अभी कैंसर और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। कोई बहुत परहेज रखता है, ऐसा पतला दुबला शुगर नहीं खाता, पहली बार पता चलता है शुगर 500 रोज हम देखते हैं ओपीडी में, रोज की बातें है ये, रोज की। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, केवल भोजन या लाइफस्टाइल से परे भी और कोई सारी बहुत सारी चीजें है। एक माता थी जिसकी इच्छा थी कि मैं अपने बहू की मेरा जो पोता है उसकी जब तक शादी नहीं देखती मरूंगी नहीं। वेंटिलेटर पे थी, इतनी सीरियस थी, बस अब जाने वाली थी, पर उसने जो पहले कहा था ना कि मैं जब तक देखूंगी नहीं मरने वाली नहीं, हमने देखा इतना पूरा नीचे कार्डियक अरेस्ट हो गया, सब हो गया, सबसे बाहर निकल के आई, वार्ड में शिफ्ट हुई, डिस्चार्ज हुई, शादी हुई और उधर फिर डेथ हो गई बहुत सारे चीजें ऑपरेट करती है, बहुत सारी चीजें, केवल खान पान ये वो ये पांच छह चीजें नहीं है और बहुत सारी। एक मलेशिया की माता थी, पांडवन में आई भट्टे के लिए, डबल फॉरेनर्स का ग्रुप, यहां आई दो दिन रुकी और अचानक कुछ हो गया, सीरियस हो गई, हॉस्पिटल आई, और इससे पहले कि कुछ करते शरीर छोड़ दिया। बाद में उसका बेटा आया, उसने कहा मेरी मां ने कहा था जाते समय मैं मधुबन जा रही हूं वापस नहीं आऊंगी। दो तीन साल पहले ऐसा ही भट्टी का एक ग्रुप था, एक माता आई गुजरात से, शांति स्तंभ पर बैठी, शाम को ग्रुप आया, दूसरे दिन भट्टी चालू होने वाली थी, वहां बैठी कमरे में गई, कार्डियक अरेस्ट, हॉस्पिटल लेके आए, ब्रॉड डेड, खत्म, कोई बीमारी नहीं थी। बहुत सारी बातें हैं, ये तो चलो मेडिकल डिस्कशन, इसको बाजू करो, कहां थे हम कवच की कौन सी बात पर थे? ये पूरे शरीर को कवर कर देता है, पूरी आत्मा को कवर कर देता है। अगला, नीट एंड क्लीन कवच है ये, बहुत योग जैसे, योग के कवच जैसा नीट एंड क्लीन और कोई कवच नहीं है संसार में, बहुत नीट एंड क्लीन है। तो ये पांच, उसके बाद में अगला, ये जो कवच है हरेक को अवेलेबल है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है, इसके पैसे ज्यादा है, ये है वो है, हरेक को मिल सकता है ये कवच, हरेक को। ऐसी पवित्रता को बढ़ा दो, प्रभु प्रेम को बढ़ा दो, एकाग्रता को बढ़ा दो, विधि को ठीक ठाक कर दो, लक्ष्य को ऊंचा कर दो, अपने आप हो जाएगा। तो ये कवच सबके लिए। अगला, ये कवच केवल संगम युग पर प्राप्त होता है और संगम युग में पूरा समय प्राप्त होते रहता है, और किसी युग में ये प्राप्त नहीं होगा। देवता है किसी कवच को पहन के नहीं घूमेंगे। अगला, ये कवच किसी भी स्थान पर मिल सकता है, ऑर्डर कहीं से भी दी जा सकती है कि हमको चाहिए, डिलीवरी हो जाएगी। और ये कवच बेमिसाल है, अनकंपेरेबल, ऐसा कवच आज तक किसी को ना मिला ना मिलेगा। आज की मुरली में गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार की चर्चा की थी बाबा ने, उसको ही उनका शरीर कहा जाता है। कोई तलवार 100 की मिलती है, कोई 2-3 हजार की मिलती है, मुरली में आया ना सुबह। उनकी भी 2 तलवारें थी, अभी दोनों विदेश में है, लाने का प्रयत्न चालू है। उनकी बहुत लंबी कहानी है एक। अगला, ये कवच केवल और केवल एक ही व्यक्ति, एक ही से प्राप्त हो सकता है, वो जो डिवाइन शॉपकीपर है, वो जो सुप्रीम शॉपकीपर है बाबा से, और कोई ये कवच दे नहीं सकता। और लास्ट 16वीं पॉइंट, ये कवच प्राप्त करके यदि अहंकार किया, धोखा दिया, तो कवच अपने आप गायब। हम योगी है, हम ये है, हम वो है, हम इतने साल से योग कर रहे हो, तुम तो अभी अभी आए हो, हम बहुत बड़े योगी है। अहंकार किया या धोखा दिया, ये योग पहन, ये कवच पहनकर, और धोखे की सजा बहुत बड़ी है। यहां पर एक साइंटिस्ट था किसी देश में, उसने एक ऐसा अद्भुत सा कवच तैयार किया कि जो अभेद्य था। सारे मिलिट्री वालों के पास गया, मीटिंग हुई, सारे मिलिट्री के मार्शल बैठे, हेड ऑफ द नेशन बैठे, और उसने कहा कि ये मेरा कवच, कोई भी गोली इसको भेद नहीं सकती, आप ले लो। युद्ध का सीन था, विदेश की कहानी है। तो वो लोग कहते हम नहीं मानेंगे, हमको डेमो दो। तो डेमो दिया जाता है, एक डमी तैयार की जाती है, उसको कवच पहनाया जाता है, बंदूक मारे जाती है, उस कवच को कुछ नहीं होता है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमको ये कवच चाहिए, क्या कीमत है? वो कहता है $1,000 एक कवच की। वो कहते हैं अभी तो युद्ध का मौसम चालू है, पहले हम आपसे युद्ध को जीत लेते, बाद में आपके पैसे देंगे, पेमेंट बाद में होगा, पहले हमको जीतने दो। वो कहता है ठीक है। युद्ध पूरा होता है, 1 महीना पूरा हो जाता है, युद्ध जीत लेते हैं, वो पैसे लेने आता है। सोल्जर्स कहते हैं साहब नहीं मिलेंगे। अगली बार जाता है, कई महीनों तक ट्रायल करता है, मिलने ही नहीं देते उसको। वो कहता है अच्छा, मेरे साथ धोखा। अभी वो गोलियां तैयार करता है, ऐसी गोलियां जो उस कवच को भेद दे, और दुश्मनों को जाके दे के आता है। दुश्मन फिर आक्रमण करता है, और इस बार ये मार्शल कहते जाओ सब लोग, तुम्हारे पास शक्तिशाली कवच है, कुछ नहीं होगा, और सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये थोड़ी क्रूएल स्टोरी है, पर बदले वाली है। कवच तो पहन लिया, अगर बाप को धोखा देने की कोशिश की तो माया की गोलियों का सामना करना पड़ेगा। फिर मत कहना हाय ये क्या हो गया, हम तो इतना योग करते थे, आज की मुरली में काम विकार में जाते हैं। कहने को भी फिर कुछ नहीं रहता है, किसको कहे, बता भी नहीं सकते। फिर ज्ञान सुनाना तो बहुत दूर की बात, ये ज्ञान कोई ऐसा आसान नहीं है कि बैठो और सुना दो। सुनाने वाले में क्या चाहिए, सबका अनुभव है, धारणाएं। जिस दिन सारे दिन भर धारणा कम है, शाम को कोर्स कराओ, कैसा होता है, स्थिति ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में एक मैडम आए थे, हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर थे, इतना अनुभव था, अभी अभी ज्ञान में आए 15-20 दिन। एक बार उनको कहा गया था आप मुरली सुनाओ, वो तो एकदम मास्टर है हिंदी के। उसने कहा मैं हिंदी तो जानती हूं, पर वहां जहां ब्रह्मा कुमारियां बैठती है और मुरलियां सुनाती है, वहां बैठने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं सुना सकता। वहां बैठने के लिए क्या चाहिए? बाल ब्रह्मचर्य। कोई भी किसी का भी काम नहीं है, केवल बोलना आ गया अर्थात सुना दिया, ऐसा नहीं है। क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए, अनटच्ड प्यूरिटी। तो योग का कवच धारण करके रखना है। इस कवच की 16 विशेषताएं, योग की 8 अवस्थाएं और योग की 8 स्थितियां और स्टेप्स 8, ये सब करके स्वयं को योगी बनाना है, महान बनाना है। बाबा को योगी बच्चे बहुत प्रिय है, बाबा को ज्ञानी बच्चे बहुत प्रिय है, और योगी, योगी बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय है और योगी तो आत्मा मेरा ही स्वरूप है, मैं स्वयं हूं, वो मेरा ही स्वरूप है। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो मुझे बहुत प्रिय है, तो ऐसे ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा सभी को बनना है। और ये कवच निरंतर धारण किए रहना है। अच्छा, ओम शांति।